नमस्कार। आज हम जिस किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं वो कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं जेनिफर ईगन के उपन्यास अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड की। इसे 2011 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था।
हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसकी असली पहचान, मतलब जो इसकी खासियत है, वो है इसकी बनावट।
बिल्कुल, कहानी एकदम बिखरी हुई सी लगती है ना?
हाँ, समय कभी आगे जाता है, कभी 10 साल पीछे, किरदार आते हैं चले जाते हैं।
तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ लिखने का एक नया अंदाज है या इस बिखराव में ही कहानी का असली मतलब छपा है?
और यही सवाल इस उपन्यास के दिल तक पहुंचने की चाबी है। देखिए, इसे एक आम नॉवल की तरह पढ़ना वो सही नहीं होगा।
अच्छा,
ये कॉन्सेप्ट एल्बम जैसा है। हर चैप्टर एक अलग गाना है, अलग धुन, अलग आवाज,
और जब आप सारे गाने सुन लेते हैं
तब जाकर एक पूरी तस्वीर बनती है, एक पूरा एहसास उभरता है।
13 अध्याय जो दशकों में फैले हुए हैं,
और इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को एक नाम जोड़ता है, द गून स्क्वाड।
जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में किसी गिरोह की तस्वीर बनती है।
बिल्कुल, लेकिन यहां गुंड यानी गुंडा कोई इंसान नहीं है,
बल्कि खुद समय है।
हाँ, उपन्यास का ये मूल विचार है कि समय एक बेरहम गुंडे की तरह है
जो हमारी जिंदगी में आता है
और हमसे हमारी जवानी, हमारे सपने, हमारी मासूमियत सब कुछ छीनकर चला जाता है।
और आज हम यही देखेंगे कि किरदार समय के इस हमले का सामना कैसे करते हैं।
क्या वो हार मान लेते हैं या उन बिखरे हुए टुकड़ों से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं?
तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से, बेनी सालाजार और सैशा ब्लेक।
दो ध्रुव एक तरह से।
हाँ, बेनी एक कामयाब रिकॉर्ड कंपनी का मालिक है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला लगता है।
उसका खोखलापन उसकी अजीब हरकतों में साफ दिखता है,
जैसे वो अपनी कॉफी में सोने के कण मिला के पीता है।
हाँ, अपनी खोई हुई जवानी और ताकत वापस पाने के लिए। ये सुनने में मजाकिया लगता है, पर असल में बहुत दुखद है।
ये दिखाता है कि वो असलियत से कितना दूर भाग रहा है।
बिल्कुल, वो बाहरी चीजों से उस अंदरूनी खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है।
और दूसरी तरफ है साशा, बेनी की असिस्टेंट। वो क्लेप्टोमेनिया यानी चोरी करने की बीमारी से जूझ रही है।
लेकिन उसकी चोरी भी बड़ी अजीब है, वो कोई महंगी चीजें नहीं चुराती।
नहीं, वो दूसरों की जिंदगी के छोटे छोटे टुकड़े चुराती है।
किसी के बाथरूम से साबुन, किसी औरत के पर्स से एक पुराना कार्ड।
क्यों, इन चीजों से उसे क्या मिलता है?
ये चीजें उसके लिए सिर्फ चीजें नहीं है, ये जुड़ाव का एक एहसास है। साशा इतनी अकेली है कि वो लोगों से सीधे तौर पर रिश्ता बना ही नहीं पाती।
तो वो उनकी चीजों को चुरा कर उनके जीवन का एक हिस्सा अपने पास रख लेना चाहती है।
हाँ, ये उसकी टूटी हुई आत्मा की आवाज है जो किसी से जुड़ने के लिए तड़प रही है।
तो हमने बेनी और साशा के आज की बात की जो संघर्ष से भरा है, पर उपन्यास हमें बताता है कि हर किसी की जड़ें अतीत में होती हैं।
हाँ, कोई भी इंसान हवा में पैदा नहीं होता।
तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब सब कुछ मुमकिन लगता था।
कहानी हमें ले जाती है सैन फ्रांसिस्को के 1970 के दशक में, पंक रॉक का तूफानी दौर।
हवा में विद्रोह, संगीत में गुस्सा
और नौजवानों की आंखों में दुनिया बदल देने के सपने।
यही हम एक युवा जोशीले बेनी सालाजार से मिलते हैं,
जो द फ्लेमिंग डिल्डोज नाम के एक बैंड में बास गिटार बजाता है।
उस वक्त उसकी रगों में सिर्फ संगीत दौड़ता था, सोने के कण नहीं।
और उसी बैंड में था उसका सबसे अच्छा दोस्त और उस बैंड की असली जान, स्कॉटी हॉसमैन।
स्कॉटी वो एक खालिस कलाकार है, उसके लिए संगीत कोई प्रोडक्ट नहीं, आत्मा की आवाज है।
और वो किसी भी कीमत पर अपनी कला से समझौता करने को तैयार नहीं।
बिल्कुल, और यहीं से इन दोनों दोस्तों के रास्ते अलग होने की नींव पड़ती है ना?
हाँ, उस दौर के छोटे छोटे फैसले, छोटी छोटी गलतियाँ उनके भविष्य पर बहुत लंबी परछाइयाँ डालती हैं।
अतीत कभी मरता नहीं है, वो बस हमारे अंदर शक्ल बदल कर जिंदा रहता है। बेनी और स्कॉटी की कहानी कला की दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल हमारे सामने रखती है। क्या एक कलाकार अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर कामयाब हो सकता है, या कामयाबी के लिए समझौता करना ही पड़ता है?
बहुत बड़ा सवाल है ये।
बेनी ने समझौता किया, वो सफल हो गया। स्कॉटी अड़ा रहा और गुमनामी में खो गया।
लेकिन उपन्यास इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि बेनी गलत था और स्कॉटी सही।
अच्छा,
नहीं, वो हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाता है। बेनी जो कामयाब हुआ, वो अंदर से कितना अकेला और खोखला हो गया।
बात तो सही है।
तो मुद्दा यह है कि कला की दुनिया में हर चुनाव की एक बड़ी कीमत होती है, और वो कीमत दोनों ने चुकाई।
और ये कीमत एक बहुत ही मार्मिक सीन में सामने आती है। सालों बाद स्कॉटी,
जो अब एक चौकीदार है,
एक बड़ी सी मछली लेकर बेनी के आलीशान दफ्तर पहुंचता है। वो मछली वो क्या है, एक तोहफा या एक ताना?
वो मछली स्कॉटी की कला का प्रतीक है, जंगली असली जिसे काबू नहीं किया जा सकता,
और बाजार की नजरों में जिसकी कोई कीमत नहीं है।
हाँ, वो मुलाकात दर्द और अपमान से भरी है। वो मछली उन दोनों के बीच की उस खाई को दिखाती है जो समय और उनके फैसलों ने बना दी है।
लेकिन यहाँ असफलता का मतलब अंत नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं। स्कॉटी की उस गुमनामी में भी एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है, जो शायद बेनी की कामयाबी में नहीं है।
हमने बेनी और स्कॉटी के संघर्ष की बात की जो बाहर की दुनिया से है, लेकिन साशा की लड़ाई तो पूरी तरह से अंदरूनी है।
हाँ, उसकी चोरी की आदत सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी की जड़ तो बहुत गहरी है।
और उस जड़ तक पहुंचने के लिए उपन्यास हमें साशा के अतीत के एक बहुत दर्दनाक हिस्से में ले जाता है।
हमें किशोरी साशा से मिलते हैं जो घर से भागकर इटली के नेपल्स शहर में रह रही है।
वहाँ उसकी दोस्ती रॉब नाम के एक लड़के से होती है,
और फिर एक हादसा होता है और रॉब नदी में डूबकर मर जाता है। वो मौत साशा को हमेशा के लिए बदल देती है।
तो ये सदमा ही उसकी बीमारी की जड़ है, ये डर कि वो जिसे भी अपने करीब आने देगी उसे खो देगी।
हाँ बिल्कुल, उस दिन के बाद से वो किसी से भी गहरा रिश्ता बनाने से डरने लगती है। उसे लगता है कि जुड़ाव का मतलब ही बिछड़ना है।
इसीलिए वो लोगों से नहीं, उनकी चीजों से जुड़ती है।
चोरी करना उसका एक तरीका है उस खालीपन को भरने का।
और ठीक यही जब हम किरदारों के सबसे गहरे जज्बातों की बात कर रहे होते हैं, लेखिका एक ऐसा दाव चलती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
आप उस पावर पॉइंट चैप्टर की बात कर रही हैं?
हाँ, एक पूरा अध्याय माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे लगा ये कोई मजाक है, ये किताब में कैसे काम कर सकता है।
यही तो इस उपन्यास का जादू है। ये सुनने में जितने अजीब लगता है पढ़ने में उतना ही असरदार है।
बताइए इसके बारे में।
ये प्रेजेंटेशन भविष्य में साशा की बेटी एलिसन ने बनाया है। वो अपने ऑटिस्टिक भाई लिंकन के संगीत के जुनून को चार्ट, ग्राफ और बुलेट पॉइंट्स के जरिए समझा रही है।
मतलब एक कॉर्पोरेट चीज का इस्तेमाल करके
लेखिका परिवार के सबसे गहरे और अनकहे जज्बातों को सामने लाती है। ये विरोधाभासी इसकी ताकत है।
तो ये सिर्फ स्टाइल नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्ट और ग्राफ के जरिए भावनाओं को दिखाना हमें ये एहसास दिलाता है कि कभी कभी हम सीधे सीधे प्यार या दर्द जाहिर कर ही नहीं पाते।
और इसी प्रेजेंटेशन में एक बहुत खूबसूरत बात सामने आती है
कि लिंकन को गानों से ज्यादा गानों के बीच के पॉज यानी ठहराव पसंद है।
वो खामोशी
उसे सुकून देती है, और ये पॉज या ठहराव
पूरे उपन्यास का निचोड़ बन जाता है।
सही का, ये हमें बताता है कि जिंदगी सिर्फ घटनाओं और शोर का नाम नहीं है, जिंदगी उन खाली जगहों, उन ठहरावों में भी बसती है।
असल कहानी तो अक्सर उन्हीं खाली जगहों में छिपी होती है। कहानी का सफर हमें अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य में ले जाता है, लगभग 2028 के आसपास। दुनिया बदल चुकी है।
और इस भविष्य में संगीत की दुनिया के सबसे बड़े आलोचक कौन हैं? छोटे बच्चे,
पॉइंटर्स।
हाँ, उन्हें पॉइंटर्स कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि उनकी प्रतिक्रिया सबसे सच्ची होती है। ये आज के बाजारवाद पर एक बहुत ही तीखा व्यंग है।
और इसी भविष्य में कहानी के सारे धागे एक साथ आकर मिलते हैं, है ना?
बिल्कुल। बेनी जो अब बूढ़ा हो चला है और एलेक्स मिलकर स्कॉटी हॉसमैन का एक वापसी कॉन्सर्ट आयोजित करते हैं।
वही स्कॉटी जो सारी जिंदगी गुमनामी में जिया।
उपन्यास का अंत इसी कॉन्सर्ट पर होता है। स्कॉटी मंच पर है और अपना वही सच्चा बेपरवाह संगीत बजा रहा है,
और उसे सुनने वालों में नई पीढ़ी के पॉइंटर्स भी हैं और पुरानी पीढ़ी के लोग भी।
ये एक उम्मीद भरा अंत है। ये बताता है कि समय और तकनीक चाहे कितने भी बदल जाएं,
एक सच्ची आवाज, एक असली कला अपना रास्ता और अपने सुनने वाले ढूंढ ही लेती है,
भले ही इसमें पूरी जिंदगी लग जाए।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये उपन्यास हमें ये सिखाता है कि समय भले ही एक घूण की तरह हमसे हमारी जवानी और सपने छीन ले,
लेकिन कला, यादें और इंसानी रिश्ते हमें उस गुण को भी मात देने की ताकत देते हैं। वे हमें बिखरे हुए टुकड़ों से कुछ नया और सुंदर रचने का हौसला देते हैं। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।